मणिपुर में शांति क्यों नहीं आ पा रही है। एआईडीएम 18 सितंबर 2024 मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म सीएसएसएस ने मणिपुर हिंसा पर एक व्यापक फील्ड रिपोर्ट की और मई 2024 में शांति मणिपुर से दूर शीर्षक से अपनी रिपोर्ट पेश की। साथ में रिपोर्ट के दो अंश दिए गए हैं जो पूर्वोत्तर राज्य में जारी दरारों को प्रस्तुत और विश्लेषित करते हैं। अलग से प्रकाशित एक लेख में लेखिका और यात्री हिमाली कोठारी ने सीएसएसएस रिपोर्ट पढ़ने के अपने अनुभव को बताया है और बताया है कि कैसे इसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। लगातार हिंसा और नुकसान, लगभग एक साल से चल रहे इस संघर्ष में भारी नुकसान हुआ है, जान माल का काफी नुकसान हुआ है। कुकी और मैतेई दोनों के घरों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। मैतेई लोगों ने आरोप लगाया कि चूड़ा चांदपुर में मैतेई लोगों की संपत्तियों को कुकी लोगों ने इस तरह से नष्ट कर दिया कि अब यह पता लगाना मुश्किल है कि वह घर या संपत्ति कहाँ थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि घाटी में कुकी लोगों की संपत्तियों को भी अछूता छोड़ दिया गया है। 70,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 45,000 कुकी हैं। घाटी और पहाड़ियों में बड़ी संख्या में पूजा स्थलों पर भी तोड़फोड़ की गई और उन्हें अपवित्र किया गया। कथित तौर पर 300 से अधिक चर्चों को जला दिया गया है। इनमें इम्फाल में मैतेई और कुकी लोगों के चर्च शामिल हैं। पहाड़ियों में मैतेई लोगों के कुछ मंदिर नष्ट कर दिए गए। कुकी और कुछ मैतेई लोगों ने पुष्टि की है कि मैतेई बहुल क्षेत्रों में, जबकि कुकी लोगों के चर्चों पर हमला किया गया और उन पर तोड़फोड़ की गई। उनके बगल में स्थित नागा ठंगुल लोगों के चर्चों को अछूता छोड़ दिया गया। एक अभेद्य सीमा। मणिपुर संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य में जातीय सफाई की एक अभूतपूर्व घटना हुई है। राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों, मैती और कुकी लोगों के निवास वाले क्षेत्रों के बीच कड़ी सुरक्षा वाली सीमाएं बनाई गई हैं, लेकिन सीमाओं का यह पुनर्निर्धारण आधिकारिक नहीं है क्योंकि कोई अलग राज्य नहीं बनाया गया है। हालांकि सीमाएं दो शत्रु देशों के बीच की सीमाओं जितनी ही कठोर हैं, उनकी सुरक्षा अलग अलग सुरक्षा बलों द्वारा की जाती है, जैसे कि असम राइफल्स कुकी लोगों की सुरक्षा करती है और मणिपुर पुलिस मैती लोगों की सुरक्षा करती है। 3 मई को शुरू हुई हिंसा के परिणाम स्वरूप मैतेई क्षेत्रों में कुकी लोगों और कुकी क्षेत्रों में मैतेई लोगों के जीवन और संपत्तियों पर हमले हुए। घाटी के जिलों में कुकी आबादी को व्यवस्थित रूप से सेना को सौंप दिया गया और कुकी लोगों के निवास वाले पहाड़ों पर ले जाया गया। इसी तरह दंगों के बाद सुरक्षा बलों ने पहाड़ियों से मेईती लोगों को निकाला और उन्हें घाटी के जिलों में मेईती बहुल क्षेत्रों में भेज दिया। कुछ ही दिनों के अंतराल में कुकी और मेईती को क्रमशः पहाड़ियों और घाटी में व्यवस्थित रूप से भेजा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से जातीय सफाया और अलगाव हो गया। सुरक्षा बलों की भागीदारी के साथ जातीय क्षेत्रों का यह अलगाव कानूनी नहीं है और यह अभूतपूर्व है। हालांकि यह दोनों जातीय समूहों को सुरक्षित करने के बहाने किया जाता है। इस अभूतपूर्व कार्रवाई को किसी ने चुनौती नहीं दी है। इस अलगाव को बनाए रखने के लिए पहाड़ियों और घाटी के बीच एक सीमा स्थापित की गई है। इस तथाकथित सीमा पर भारतीय सेना, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, मणिपुर राज्य पुलिस, मीरा पैबिस और अन्य द्वारा स्थापित 7 चौकियां हैं। एक बफर जोन भी है। कुकी और मीतेई, जिसमें कुकी के निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं, को इन सीमाओं को पार करके दूसरी तरफ जाने की अनुमति नहीं है। घाटी में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी कुकी और इसके विपरीत पहाड़ियों में जाने वाले किसी भी मीतेई को रोक दिया जाता है। अवांछित घुसपैठियों को गोली मारने की घटनाएं हुई हैं। पिछले 10 महीनों में कुकी विवाह पार्टी सहित बफर जोन में भटकने वाले लोगों पर गोलीबारी और गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं। तथाकथित सीमा क्षेत्रों में हत्याएं जारी हैं, यदि अन्य समुदाय के सदस्य उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। टीम को बताया गया कि कैसे एक विवाह पार्टी के मेहमान खो गए और सीमा के गलत हिस्से में प्रवेश कर गए। उनका पीछा करके उन्हें मार दिया गया। गैर कुकी और गैर मीति चेक पॉइंट्स को पार करने के बाद सीमा पार कर सकते हैं, जहां उनसे पहचान और यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की जाती है। केवल पंगल ड्राइवर, जैसा कि एक मीति मुस्लिम को कहा जाता है, जिसे कुकी और मीति दोनों के लिए एक स्वीकार्य समूह के रूप में देखा जाता है, को गैर कुकी और गैर मीति आगंतुकों को ड्राइव करने की अनुमति है जो सीमा पार करना चाहते हैं। सीमा इतनी सख्त है कि कुकी द्वारा चुने गए विधायक राज्य विधानसभा सत्र में शामिल नहीं हो सके, मारे जाने का डर बना रहता है। ऐसी सीमा वास्तव में अभूतपूर्व है और संघर्ष के पैमाने पर एक परेशान करने वाला प्रतिबिंब है। पहाड़ी क्षेत्रों में राहत को इम्फाल घाटी को दरकिनार करते हुए मिजोरम के रास्ते भेजा गया है। घाटी में निकटतम हवाई अड्डा पहाड़ियों से लगभग एक घंटे की यात्रा पर है। हालांकि सीमा के कारण मार्ग दुर्गम है। इस प्रकार मणिपुर से बाहर जाने और हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए कुकी को मिजोरम के आइजोल तक 8 घंटे की कठिन सड़क यात्रा करनी पड़ती है। इम्फाल से चुराचांदपुर की यात्रा करने वाली CSSS टीम को अपनी यात्रा में 3 घंटे से अधिक का समय लगा, जबकि दूरी केवल 60 किलोमीटर है और सामान्य परिदृश्य में इसमें 1 घंटा लगना चाहिए था। 2 अतिरिक्त घंटे तलाशी में बिताए गए। वाहन और सामान को अलग अलग भारी हथियारों से लैस सुरक्षा बलों द्वारा संचालित 7 चौकियों पर अच्छी तरह से जांचा गया, जो सभी 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। टीम के सदस्यों को वैध परमिट और पहचान पत्र दिखाने पड़े और इस बारे में कई सवालों के जवाब देने पड़े कि वे कहां और क्यों यात्रा कर रहे थे। प्रत्येक चेक पॉइंट पर जांच इतनी सख्त थी जितनी हम में से किसी ने भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में अनुभव नहीं की है, जिसमें पाकिस्तान से आना जाना भी शामिल है। जब हम घाटी में अपना काम कर रहे थे तो एक मैतेई मित्र ने हमें मणिपुर पुलिस को अगले दिन चुराचांदपुर की यात्रा के इरादे के बारे में सूचित करने के लिए कहा। सबसे पहले हमने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि दूसरे इलाकों में तथ्य खोज का काम करते समय हमने पाया कि पुलिस अक्सर हमारे काम में बाधा डालती है। हालांकि हमारे दोस्त ने जिद की और स्वेच्छा से हमारे लिखित अनुरोध को पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाने की पेशकश की। हमने आखिरकार उनकी सलाह मान ली और उसी शाम एक सूचना पत्र लिखा। पुलिस की ओर से जवाब तुरंत आया। इसने हमें सलाह दी कि हम सुबह जल्दी यात्रा न करें, बल्कि दोपहर में अपनी यात्रा शुरू करें। सुबह चूड़ा चांदपुर में एक रैली थी जो पुलिस के अनुसार हमारे लिए जोखिम भरा हो सकता था। हमने पुलिस की सलाह मानने का फैसला किया, क्योंकि हमें सीमा पार करने के बाद एक पुलिस एस्कॉर्ट वाहन भी दिया गया था। एस्कॉर्ट वाहन के प्रभारी पुलिस अधिकारी की मदद के बिना हम चौकियों से नहीं निकल पाते, जिन्होंने चेक पॉइंट पर सुरक्षा कर्मियों से टेलीफोन पर बात की और उनसे अनुरोध किया कि वे हमें सीमा पार करने दें। हमारे वाहन के चालक मीतेई पंगल को चेक पॉइंट पर 100 रुपये का टोल देना पड़ा, जिसे कुकी महिलाओं ने यात्रियों की गहन जांच के बाद उनके वाहन को गुजरने देने के लिए लगाया था। पंगल चालक ने टीम से इन असाधारण समय और अपने जीवन के जोखिम को देखते हुए सामान्य किराए से कम 5 गुना अधिक किराया लिया। राज्य में फैली हिंसा के पैमाने का अंदाजा मीडिया में बताई गई बड़ी संख्या में मौतों से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट की गई मौतें 200 से अधिक हो गई हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं। इस संघर्ष के दौरान सबसे भयावह यौन हमले और बलात्कार हैं। संघर्षों में बलात्कार को पूरे समुदाय को अपमानित करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुकी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और उन्हें नग्न करके घुमाए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद इस संघर्ष के पैमाने और भयावह प्रकृति का देश और दुनिया पर असर पड़ा। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों तरफ से कितने बलात्कार की सूचना मिली थी। चुराचांदपुर के एक महिला संगठन ने इम्फाल में कुकी महिलाओं पर यौन हमलों के 36 से अधिक मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। कुछ हमले और यौन हमलों से बच गईं, जबकि अन्य की मृत्यु हो गई। इस महिला संगठन द्वारा संकलित मामलों में झोमेन पर इन हमलों में अरंभाई टेंगोल की संलिप्तता के आरोप हैं। इन प्रलेखित मामलों में यह भी बताया गया है कि मीरा पैबिस के सदस्यों ने कुकी महिलाओं पर यौन हमलों में किस तरह से सहायता की। निष्कर्ष, मणिपुर में संघर्ष बहुआयामी है और इसका मुख्य कारण सत्तारूढ़ शासन की जानबूझकर की गई विभाजनकारी नीतियां हैं, जिनके संघर्ष में निहित स्वार्थ हैं। इस संघर्ष के सामने प्रधानमंत्री की पत्थर जैसी चुप्पी, जिसके कारण जातीय सफाया हुआ है और कठोर सीमा के साथ दो समुदायों का अलगाव हुआ है, यह इस बात का संकेत है कि कोई राजनीतिक समाधान नजर नहीं आ रहा है। इसका यह भी अर्थ है कि इस मानवीय संकट का कोई अंत नहीं है। यह 70,000 विस्थापित कुकी और मैतेई लोगों के लिए अकथनीय कठिनाइयों का संकेत है, जिन्होंने अपने घर और आजीविका खो दी है और राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है, जबकि महिलाओं के साथ बलात्कार और निर्दोष नागरिकों के सिर कलम किए जाने के साथ इस तरह के पूरी तरह से क्रूर समाज में न्याय की बहुत कम संभावनाएं हैं। वहीं अरंभाई टैंगोल और मैतेई लीपुन के उग्रवादी समूह समाज में खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। तथ्य खोजी दल ने मणिपुर में शांति के भविष्य और इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने के तरीके को समझने की कोशिश की है। नागरिक समाज की समझदार आवाजों में अपार ज्ञान है। वे संवाद और उपचार की शुरुआत करने में सक्षम हैं और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये सुझाव और दृष्टिकोण हिंसा और घृणा के अंधेरे में प्रकाश के लिए एक छोटा सा रास्ता प्रदान करते हैं। उपसंहार। इस उपसंहार को लिखते समय मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा शुरू होने के 1 साल हो चुके होंगे। 1 साल बीत चुका है, लेकिन दर्दनाक वास्तविकता बनी हुई है। कुछ भी नहीं बदला है। पिछले 1 साल में समाधान के लिए राजनीतिक संवाद शुरू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। दोनों समुदाय, मैतेई और कुकी, अलग अलग चेकपोस्ट पर सशस्त्र अधिकारियों और उग्रवादियों द्वारा पहरा दी जाने वाली भौतिक सीमा से विभाजित हैं। इस सीमा को पार करके दूसरी तरफ जाना असंभव है। यह बस अगम्य है। इसमें सीमा पार तैनात नौकरशाह डॉक्टर शामिल हैं, जिन्हें अस्पतालों में अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और छात्र जो विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा खो चुके हैं। नाकेबंदी के कारण घाटी से पहाड़ों तक जाने वाली किसी भी सहायता को रोका जा रहा है। घाटी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता इम्फाल हवाई अड्डे से होकर जाता है। वहीं मणिपुर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता कुकी लोगों के लिए आइजोल हवाई अड्डे से होकर जाता है, जो 12 से 14 घंटे की सड़क यात्रा है। भौतिक सीमा को सख्ती से खींचा गया है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि नफरत और अविश्वास दोनों समुदायों को इस हद तक विभाजित कर रहा है कि सदस्य एक दूसरे से सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकते, शांति पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर नहीं आ सकते, या दोनों पक्षों के नुकसान के प्रति एकजुटता व्यक्त नहीं कर सकते। संघर्ष में जारी गतिरोध और चल रही हिंसा के लिए राज्य की जानबूझकर निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि हिंसा भड़कने पर अनौपचारिक समझ यह थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहाड़ियों में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह घाटी में भी यही सुनिश्चित करेंगे। तथा कथित बफर जोन में गोलीबारी जारी है, जिसमें नियमित रूप से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। इस निरंतर गोलीबारी के लिए आंशिक रूप से मिलिशिया के हाथों में 4,500 लूटे गए हथियार जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, जिन्हें राज्य द्वारा वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे भय और लाचारी का माहौल पैदा हुआ है। शायद सबसे चौंकाने वाली और निराशाजनक बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, सिवाय मणिपुर की उन महिलाओं के बारे में बोलने के जिनका वीडियो पर यौन उत्पीड़न किया गया। यह भी विपक्ष द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद ही हुआ। प्रधानमंत्री ने भारत के सामने सबसे गंभीर और अभूतपूर्व संघर्ष का दौरा नहीं किया है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। विडंबना यह है कि मणिपुर में हालात नियंत्रण में होने का दावा करते हुए उन्होंने अन्य देशों का दौरा किया, लेकिन मणिपुर संकट के बारे में बोलने से परहेज किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कुकी लोगों से संपर्क न करके और मीतेई लोगों का पक्ष लेकर नफरत और विभाजन की भाषा बोली है। मुख्यमंत्री कुकी लोगों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देना जारी रखते हैं। एक और चिंता जिस पर प्रमुखता से ध्यान देने की आवश्यकता है वह है अरंबाई टेंगोल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिनकी भूमिका मीडिया और अन्य रिपोर्टों में हिंसा को बढ़ावा देने और कुकी लोगों को निशाना बनाने में अच्छी तरह से प्रलेखित है। सत्तारूढ़ शासन द्वारा समर्थित इस मिलिशिया ने हिंसा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सार्वजनिक डोमेन में रिपोर्टों के अनुसार इसने राज्य के शस्त्रागार से हथियार लूटे हैं। वे अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा दी गई छूट से उत्साहित हैं, जो स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक भी है। सबसे अविश्वसनीय कदम में मणिपुर के मैतेई के 37 विधायकों और इसके 2 मैतेई सांसदों ने सार्वजनिक रूप से शपथ ली, जिसमें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए। केंद्र के साथ अरंबाई टेंगोल के उद्देश्यों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए यह समारोह ऐतिहासिक कंगला किले में हुआ, जिसमें अरंबाई टेंगोल के प्रमुख कोरुंग नबा खुमान एक अवैध हथियार के साथ पुलिस वाहन में कार्यक्रम स्थल पर आए। संगठन की 6 मांगों में अनुसूचित जनजाति सूची से अवैध कुकी जनजातियों को हटाना, असम राइफल्स की जगह किसी अन्य बल को शामिल करना और संचालन निलंबन समझौते को खत्म करना शामिल है। थापर 2024। अंत में मणिपुर के सामने सबसे बड़ी चिंता 70,000 विस्थापित व्यक्तियों का भाग्य है, जो संघर्ष शुरू होने के 1 साल बाद भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। उनका भाग्य अनिश्चितता और असहायता में लटका हुआ है, क्योंकि वे अपर्याप्त भोजन, दवाइयों, शौचालयों और आजीविका के साथ राहत शिविरों में एक साथ फंसे हुए हैं। इन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, जिनमें से कुछ ने अपने प्रियजनों को भी खो दिया है। उनकी दुर्दशा राज्य की अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह से भूल गई है, क्योंकि उनके पुनर्वास के बारे में कोई समाधान नहीं दिया गया है या चर्चा शुरू नहीं की गई है। राज्य द्वारा अब तक उठाए गए एकमात्र कदम कुकी को लक्षित करने और मैतेई को शांत करने के उद्देश्य से है। इनमें देश की आंतरिक सुरक्षा और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करना शामिल है। इससे यह बात और पुख्ता होती है कि कुकी म्यांमार से अवैध रूप से आए अप्रवासी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की भी घोषणा की है, जो समुदाय की मणिपुर और मिजोरम, असम और नागालैंड के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश और म्यांमार के आसपास के इलाकों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इसी तरह नागा लोग नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और पड़ोसी म्यांमार में रहते हैं। बाड़ लगाने का यह कदम इन समुदायों के लिए बाढ़ के पार अपने परिवारों के साथ संबंध बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करेगा। ये कदम कुकी और उनके अलग प्रशासन के संकल्प को और भी अलग थलग कर देंगे। मणिपुर में राजनीतिक समाधान लाने और सुधार प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों पर है। जब तक राज्य सरकार प्रक्रिया शुरू नहीं करती, मणिपुर में शांति नहीं रहेगी। नफरत और अविश्वास मणिपुर के सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं और मानवता और एकजुटता की किसी भी समानता को खत्म कर रहे हैं। पूरी तरह से तबाह हो चुके मणिपुर को सुधारात्मक राज्य कार्रवाई और नागरिक समाज के साथ परामर्श की आवश्यकता है, जो शांति, न्याय और सच्चाई के माहौल को फिर से बनाने में मदद करेगा, अन्यथा मणिपुर अंधेरे में टटोलता रहेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।